हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसमें भगवान अब अर्जुन को आत्मज्ञान से आगे बढ़कर अपने स्वधर्म का ज्ञान समझा रहे हैं। और हमारी पिछली सेटिंग में हमने सुना था, भगवान ने अर्जुन के दृष्टिकोण से एक हटकर दृष्टिकोण सुनाया या दिखाया। अर्जुन का यह दृष्टिकोण था प्रथम अध्याय में कि यदि मैं अपने ही स्वजनों को मारूंगा तो मैं पाप का भागीदार रहूंगा और मुझे नरक गति मिलेगी। और पिछले श्लोक में हमने सुना, श्लोक क्रमांक 33, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हित्वा पापम अवाप्स्यसि, कि यदि तुम अपने स्वजनों को नहीं मारोगे तो तुम पाप के भागीदार होगे। तो हमने ये कैसे समझा था? क्या कोई व्यक्ति अपने स्वजनों को नहीं मारता है तो पाप का भागीदार होता है? कैसे समझे इसे? अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं अपने स्वजनों को मारूंगा तो पाप का भागीदार बनूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वजनों को नहीं मारोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। कौन सही कौन गलत? नहीं समझ में? अर्जुन का कहना सही है या गलत है? हाँ बोलिए। हाँ दोनों ठीक हैं। अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। हाँ बोलिए। अर्जुन, अच्छा अच्छा तो अज्ञान में जो अर्जुन ने प्रस्ताव रखा वो हमारे नवलेश साहब के अनुसार गलत पाप था। और कोई मत किसी का? देखिए, मैंने जो आपके सामने दोनों प्रस्ताव रखे, अर्जुन के और भगवान के, उसमें ये नहीं देखना है कि व्यक्ति कौन है जो मरने वाला है, किस कारण के वजह से मरने वाला है और किस कारण के वजह से वो वहां पर खड़ा है शत्रु पक्ष में, वो जानना बहुत आवश्यक है। हाँ, स्वजनों को मारता है या स्वजन तो छोड़ दीजिए, एक चींटी को भी कोई मारता है तो पाप का भागीदार बनता है, वो भी हमारे ही अंश हैं या हमसे संबंधित, ये भगवान के अंश हैं, हमसे संबंधित वो हैं। लेकिन यहां पर अर्जुन स्वजनों को नहीं मारकर, अर्थात शत्रु पक्ष को नहीं मारकर अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे थे, तो स्वधर्म का पालन नहीं करने की वजह से पाप का भागीदार अर्जुन बनेंगे, ये समझना आवश्यक है। तो आज का श्लोक, जिसमें ये भी पिछले श्लोक से ही संबंधित है, परंतु यहां पर भगवान एक और कारण दे रहे हैं अर्जुन को युद्ध करने का। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान कह रहे हैं अकीर्तिम इन्फेमी या अपयश चापि भूतानि च अपि भूतानि लोग, भूतानि का अर्थ है लोग। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन लोग ये मत समझो कि तुम्हारा गुणगान करेंगे कि तुम युद्ध नहीं कर रहे, वो तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, अकीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी। लोगों द्वारा दी गई ये अकीर्ति के साथ तुम्हें जीना होगा, भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं कथचिंति ते व्ययाम, और ये अकीर्ति अव्यय अव्ययाम रहेगी तुम्हारी। संभावितस्य च कीर्तिर, जिस व्यक्ति को बहुत कीर्ति प्राप्त हुई हो वो व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी ज्यादा बदतर है, भगवान बोल रहे हैं। मरणाद अति रिच्यते। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे चर्चा के विषय क्या रहेंगे, पिछले श्लोक से आज का श्लोक का क्या संबंध है। लोग सदैव अर्जुन के अपयश का वर्णन करते रहेंगे, भगवान कह रहे हैं अपयश के कुछ शास्त्रों से उदाहरण, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, और अंततः कीर्ति एवं यश की सही पहचान क्या है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने यह सब कुछ अर्जुन को बताया था कि अर्जुन तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, कीर्ति चली जाएगी और तुम पाप को प्राप्त होगे। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कीर्ति के विषय में कहा था, तो अब इस श्लोक में फिर से कीर्ति के विषय में कहने की क्या आवश्यकता थी, अर्जुन के यश या कीर्ति के विषय में कहने की आज के श्लोक में क्या आवश्यकता थी, या भगवान ने आज के श्लोक में कीर्ति के संबंध में कुछ अलग बात कही है जो पिछले श्लोक में नहीं कही थी। ये पिछले श्लोक का सारांश है हमारे सामने, श्लोक क्रमांक 33 का। तीन चीज भगवान ने कहा, स्वधर्म कीर्ति, दो चीज जाएगी एक चीज मिलेगी। स्वधर्म जाएगा कीर्ति जाएगी पाप मिलेगा। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं एक कैटेगरी है जब किसी की कीर्ति चली जाती है ना, ऐसी कैटेगरी में साधारणतः बहुत से आते हैं, सभी एक प्रकार से लीजिए कि भौतिक रूप से जो भी व्यक्ति यशस्वी है या कीर्तिवान है धीरे धीरे उसकी कीर्ति जाने वाली है। जाने का अर्थ यह है कि समय और काल के प्रभाव से वो भूल जाने वाले हैं, लोग उनको भूल जाने वाले हैं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि न केवल तुम्हारी कीर्ति जाएगी अर्जुन, उसके बदले मिलेगा क्या तुम्हें अकीर्ति। देखिए अंग्रेजी के दो शब्द हैं, बीइंग नॉन फेमस एंड बीइंग इनफेमस। दोनों का अंतर क्या है, दोनों में एक है जो बहुत प्रसिद्ध नहीं है साधारण कोई, और एक है जो अप्रसिद्ध है। जैसे इस भौतिक संसार में कई व्यक्ति होते किसी न किसी प्रकार से प्रसिद्धि मिले, वो फेमस होना चाहिए, चाहे इनफेमस हो चाहे फेमस हो। जैसे कई लोग गलत काम करते हैं पेपरों में आने के लिए, कम से कम पेपर में तो आया ना नाम, तो ये मुद्दा आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम सुकून से नहीं जी पाओगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत शांति का जीवन जियोगे अकेले कहीं गुफा में हिमालय की भिक्षा, हाँ उस वैसा जीवन जियोगे भिक्षुक का। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन एक व्यक्ति, तुम इतने यशस्वी हो, इतने फेमस हो, तुम कहां जाओगे, कहां अपना मुंह छुपाओगे। तुम्हें जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो भगवान याद दिला रहे हैं अर्जुन को, जब अर्जुन अज्ञातवास में अर्जुन बृहन्नला के रूप में, तो अर्जुन के चलने से जब वो विराट के राज्य में, विराट राजा के इसमें रह रहे थे विराट नगर में, तो सारे कौरव वहां पर आए थे युद्ध करने के लिए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म इत्यादि। तो महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन महाराज विराट के जो पुत्र उनके सारथी बन के गए थे, और पूरा अर्जुन जैसे क्षत्रिय एक क्या कहते हैं हिजड़ा बन के गए थे, नपुंसक ज्यादा समझ में नहीं आता लोगों को, ज्यादा स्ट्रांग वर्ड है हिजड़ा। सोचिए कोई अपने आप को इस प्रकार से बहुरूपिया बन सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन अपने आप को छिपा नहीं सके। अर्जुन जैसे ही रथ से नीचे उतरे, क्योंकि वो भागने लगा, वो विराट के जो पुत्र थे उत्तर कुमार, वो भागने लगा, तो अर्जुन उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए, अर्जुन की चाल एक दो चाल देखते ही द्रोणाचार्य समझ गए अर्जुन है। सोचिए पीछे से अर्जुन ने दो कदम लिए थे केवल, और द्रोणाचार्य समझ गए कि ये जो प्रसिद्ध मेरा शिष्य अर्जुन है। और केवल जब अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई थी अपने गांडीव के ऊपर और उसकी टनकार वो सुनते ही बाकी लोग समझ गए ये और कोई नहीं अर्जुन। तो अर्जुन छोड़ दीजिए, अर्जुन के गांडीव की टनकार सुनकर लोग समझ गए ये अर्जुन है। तो भगवान कह रहे हैं तुम कहां जाओगे, जहां पर भी जाओगे लोग क्या कहेंगे, अच्छा यही है वो, इसके बारे में इतना सुना था है रणछोड़। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरी कॉपी मत करना, मैं चाहे कुछ भी करूं मैं फेमस रहता हूं हर समय, मैं रण भी छोड़ के जाऊं तो मेरी मूर्ति बन जाती है, लोग पूजा करते हैं उसकी। तो इसलिए ये आज का श्लोक जो है वो एक क्षत्रिय को अंदर से हिलाने वाला श्लोक है। एक जो असली क्षत्रिय है वो अंदर से हिल जाए, ऐसा श्लोक भगवान सुना रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि भगवान आज के श्लोक में अकीर्ति के विषय में अर्जुन को कह रहे हैं अव्ययाम, कि ये जो अर्जुन तुम्हें अकीर्ति प्राप्त होगी, ये मत समझना कि कुछ वर्षों पश्चात लोग भूल जाएंगे। 5000 वर्ष आगे भी नासिक में जब वेडनेसडे क्लास होगा तो तब भी उस सारे जो नासिक वाले आएंगे क्लास में वो लोग यही चर्चा करेंगे कि अर्जुन रण छोड़ के भागे थे। सोचिए अर्जुन का खाली एक संदेह कि मैं करूं या ना करूं, अब तक चर्चा कर रहे हैं हम, सोचिए वो रण छोड़ के भाग जाते तो कितनी चर्चा होती है उसकी। भगवान कह रहे हैं कि वो जो अर्जुन तुम्हें अकीर्ति मिलेगी, उस अकीर्ति में हर समय वृद्धि होती रहेगी, योर इन्फेमी विल कीप इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भगवान बोल रहे हैं उसमें कोई कटौती नहीं होगी, तो इसलिए अर्जुन के अंदर एक भय और डर पैदा कर रहे हैं भगवान अकीर्ति का। तो ये जो भय भगवान पैदा कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि क्या सच में अर्जुन इससे भयभीत होंगे? इज इट वर्थ फियरिंग इन्फेमी, इज इट वर्थ फियरिंग? तो चाणक्य पंडित इन्होंने अपने नीति में कहा है कि तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। और तीनों प्रकार के मनुष्य, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार का भय रहता है। चाहे कोई उत्तम मनुष्य भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी एक भय रहता है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो उत्तम मनुष्य होता है उसका भय है अपकीर्ति, इन्फेमी, अपयश। जो उत्तम श्रेणी के होते हैं उनको यही भय रहता है कि कहीं मेरा अपमान न हो जाए, कहीं मेरा अपयश न हो, यश न खो जाए या अपयश न मिले मुझे, ये उनका भय रहता है। चाणक्य पंडित कहते हैं मध्यम मनुष्य का भय रहता है मृत्यु, उत्तम मनुष्य को मृत्यु का कोई भय नहीं है, वो चाहे मर जाए लेकिन प्राण जाए वचन न जाए, उस टाइप उत्तम मनुष्य। लेकिन जो मध्यम है वो चाहे भाड़ में गए मेरा अपयश और ये सब कुछ, सर सलामत तो पगड़ी हजार, उस टाइप। तो चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि अभी हमको डिसाइड करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, थर्ड अधम। भोजन नहीं मिले तो उस व्यक्ति के लिए बस मरणादतिरिच्यते। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो केवल, अर्थात जो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन इनके पीछे भागता रहता है, अधम मनुष्य है, द्विपाद पशु, केवल उनको केवल उसी चीज का भय रहता है। अब देखो, एक जो छोटा बच्चा रहता है, प्रभुपाद कहा करते थे कि छोटा बच्चा, उसमें और एक पशु में बहुत सी समानताएं होती है, छोटे बच्चे में और पशु में। जैसे एक पशु जानवर होता है, वो केवल कहां खाने को मिलेगा, बस इंस्टिंक्ट्स पे वो जीता है। आप एक कुत्ते को गाली दो, उसको बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि उसको गाली की, बुलाओ उसको, कुत्ता बुलाओ, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वैसे छोटे बच्चे को भी मान अपमान इन सब का कुछ नहीं रहता कि मुझे इस व्यक्ति ने डांटा था। जैसे कई बार जानवर होते ना, कुत्ते, कुत्ते को आप मारो और उसके बाद में एक ब्रेड दिखाओ, जिस व्यक्ति ने मारा है उसी के पास जाएगा वो दुमिलाते हुए। अर्थात वो विकसित नहीं हुई है बुद्धि ये सब चीज समझने में। तो इससे यह भी समझ में आता है कि एक भौतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वो, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि ये जो मान अपमान ये सब का जो तोल मोल करता है उसके अंदर अभिमान होता है, इसलिए वो तो ये सब के पीछे रहता है। लेकिन यहां पर चाणक्य पंडित उसके संदर्भ में नहीं कह रहे जो अभिमानी अहंकारी व्यक्ति है, नहीं, वो नहीं। यहां पर एक चर्चा हो रही है सिविलाइज्ड और कल्चर्ड समाज की, चाणक्य पंडित उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनमें जो उत्तम है, उस प्रकार की श्रेणी के जो उत्तम मनुष्य हैं वो। और भगवान भी यहां पर अर्जुन को उसी श्रेणी में डाल रहे हैं। ये नहीं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तो अहंकारी बनो, नहीं, क्योंकि आगे हम चर्चा करेंगे कि कीर्ति की सही पहचान क्या है। तो ये समझना आवश्यक है कि हमें हमारे मनुष्य जीवन में कैसे अधम से मध्यम, मध्यम से उत्तम मनुष्य बनना है, भगवान की सेवा में तो आज हम कुछ उदाहरण लेंगे अपयश के शास्त्रों से। सर्वप्रथम है रावण द्वारा श्री राम की अपकीर्ति। ये सारे उदाहरण हैं जिसमें ध्यान में रखना होगा कि अकीर्ति इनकी हुई कुछ समय के लिए, लेकिन उसके पश्चात उनकी कीर्ति स्थापित हुई। लेकिन भगवान यहां अर्जुन के विषय में कह रहे अव्ययाम, तुम्हारी यह मत समझना कि बाकियों, मानो कि अर्जुन भगवान से बोले कि भाई इतिहास में भी बहुतों की अकीर्ति हुई है, आप ही राम के रूप में आए, कितने लोगों ने आपके ऊपर लांछन लगाए, और भी बहुत से उदाहरण। तो भगवान कह रहे हैं कि हां इन सब की अकीर्ति हुई लेकिन कुछ समय के लिए, और वो चली गई और फिर उनकी कीर्ति स्थापित हुई, लेकिन ये जो तुम करने जाने वाले हो इसके वजह से अव्ययाम अकीर्ति तुम्हें प्राप्त होगी। ये भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं। तो रावण ऐसा दुष्ट आदमी था ये, इसने जब सीता का हरण किया, सीता का हरण करने के पश्चात जब रावण लंका सीता को लेकर आता है तो जितनी पटरानियां रावण की और जितने और भी अन्य रावण के पार्षद, वो सब रावण की तरफ इस नजरों से देख रहे थे कि तुम किस प्रकार के इंसान हो। यहां तक कि कुंभकर्ण ने रावण को एक झिड़की दे दी थी कि इतनी सारी तुम्हारी रानियां हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती एक और को लेके आए तुम, और वो भी बेचारा कोई वनचारी। कुंभकर्ण को ये बताया गया था कि प्रभु श्री राम एक वनचारी की पत्नी को उठाकर लेके आए। तो रावण देखिए अपने आप को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। रावण बोलता है, सभी को बुलाया उसने और अब वो जस्टिफाई कर रहा है कि उसने कैसे एक अच्छा काम किया, सीता का हरण करके उसने अच्छा काम किया। वो कहता है सबको कि ये जो राम है, ये राम को इसके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया था और इसने जबरदस्ती अपनी पत्नी को साथ में लेके गया, जो बेचारी वो महलों में रहने वाली सीता, उसको जबरदस्ती वो ना वन की दर दर ठोकरें दे रहा, खिला रहा था ये राम, ये सब स्टोरी उसने बनाई। फिर कहता है कि वहां पर मैंने देखा जंगल में ये जो इतनी सुकुमल सीता, इसको क्या क्या अलग अलग प्रकार के कष्ट वहां पर भुगतने के लिए इसने छोड़ दिया था। जैसे अमेरिका में होता ना वो चाइल्ड अब्यूज और ये सब अलग अलग सोसाइटी होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन, वुमेन्स लिबरेशन टाइप, तो ये वुमेन्स लिबरेशन का प्रेसिडेंट बन के बोल रहा था कि कैसे राम अत्याचार कर रहे सीता के ऊपर वहां पर। तो राम के अत्याचार से सीता को मुक्त करने के लिए मैं सीता को यहां लाया हूं। देखिए इसको शर्म नहीं आती इस रावण को। तो सभी बोले हाँ ठीक है ठीक, कितना साधु पुरुष है ये रावण। तो लंका में उसने प्रभु श्री राम की अपकीर्ति इस प्रकार से फैलाई। अब प्रभु श्री राम का दृष्टिकोण देखिए, प्रभु श्री राम ने जब वो रावण का वध नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि रावण सुधर जाए, कि रावण भी मेरा भक्त बन जाए। तो जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, करना पड़ा प्रभु श्री राम को रावण का वध करना पड़ा, तभी जाकर उसकी मुक्ति हुई। तो रावण के वध करने के पश्चात भगवान श्री राम वो संतुष्ट हुए। अब कोई व्यक्ति ये पूछेगा कि भाई यदि वो ऐसे आदर्श उदाहरण प्रभु श्री राम दया के कृपा के, तो रावण का वध करने के पश्चात वो प्रसन्न या संतुष्ट कैसे हुए। बहुत सुंदर रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम रावण के वध के पश्चात सोच रहे थे कि एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जो मुझसे इतना द्वेष और ईर्ष्या करता था, आज वो एक व्यक्ति कम हुआ। और ये जो कि मुझसे इतना दूर जा रहा था मुझसे द्वेष करने के वजह से, वो उसकी रफ्तार अब रोक दी, मैंने दूर जाने की रफ्तार रोक दी। तो भगवान का दृष्टिकोण ये था कि इसका द्वेष, इसकी ईर्ष्या, जिसके कारण ये मुझसे दूर चला जा रहा था, उसकी रफ्तार मैंने रोकी और इस पृथ्वी पर मैं आया हूं मुझसे जो ईर्ष्या और द्वेष करते हैं उनकी संख्या कम करने के लिए। तो इसलिए भगवान अंदर संतुष्ट हो रहे थे कि अंततः अब ये रावण जो है मेरी भक्ति में लगेगा। तो ये प्रभु श्री राम का दृष्टिकोण और रावण का दृष्टिकोण देखिए, इसे कहते हैं डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर्स, 16वां अध्याय भगवद गीता का। तो भगवान बोल रहे हैं कि हालांकि रावण ने भगवान श्री राम के विषय में बहुत प्रजल्प किया, लेकिन प्रभु श्री राम को अकीर्ति प्राप्त नहीं हुई, उन्हें उल्टा कीर्ति प्राप्त हुई। कुछ समय के लिए लोग लंका में सोच रहे थे कि हाँ, हो सकता है कि ये राम बहुत अत्याचारी पति है, लेकिन नहीं। तो ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अब प्रभु श्री राम अयोध्या में चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्यावासी वो उनमें से कुछ, वो जैसे वो धोबी की कथा है, वो धोबी प्रभु श्री राम के ऊपर लांछन लगा रहा था, हम ये कथा जानते हैं। तो जब भगवान श्री राम ने वो धोबी की वार्ता सुनी कि अरे मैं कोई वो राम की तरह हूं जो सीता को ले लिए, जो कि एक वर्ष तक वो रावण के साथ रही, तो मैं कोई उसके समान हूं कि मैं तुम्हें भी ले लूंगा, वो धोबी अपने पत्नी को बोल रहा। तो भगवान सीता देवी से कहते हैं, ये जैमिनी महाभारत में इसका वर्णन है, जैमिनी महाभारत में वर्णन है कि प्रभु श्री राम सीता से कहते हैं कि देखो, इस संसार में जो उत्तम पुरुष होते हैं, यदि उनकी कीर्ति क्षीण हो जाए तो जीने का कोई अर्थ नहीं उनके लिए। और वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं भगवान श्री राम, उदाहरण देते हैं सीता को कि जीने के लिए तो एक कौवा और एक उल्लू बहुत लंबी आयु तक जीते हैं। कहा गया है कि एक कौवा जो है 1000 वर्ष तक जी सकता है, 1000 वर्ष तक कौवा जी सकता है। तो भगवान कहते हैं सीता देवी से कि एक उल्लू और एक कौवा बहुत लंबी आयु तक जीते हैं, लेकिन कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, कितने लोग उनको उनकी सराहना करते हैं। कोई उल्लू पालता है घर पे, कौवा पालता है पिंजड़े में, उल्लू कौवा, लोग दूसरों को बोलते ना उल्लू है, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं। तो भगवान ने ये दो उदाहरण दिए कि ऐसा जीवन जी के क्या फायदा, जबकि हमारी कीर्ति नाश हो चुकी है। और फिर भगवान श्री राम सीता देवी को महाराज शिबी का उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत से, कि महाराज शिबी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर के अंग काट काट कर वो तराजू में तोलने लगे और अपने आप को तराजू पे चढ़ा दिया एक पक्षी को बचाने के लिए। और उन्होंने उदाहरण दिया ददीची मुनि, ददीची मुनि ने अपनी हड्डियां दे दी अपनी कीर्ति का मान रखने के लिए। तो प्रभु श्री राम सीता देवी को ये समझा रहे थे कि मैं क्यों तुम्हें वाल्मीकि मुनि के वहां भेज रहा हूं, ये जैमिनी महाभारत में वर्णन है। और जब अग्नि परीक्षा सीता देवी की भगवान ने करवाई, तो वो अग्नि परीक्षा भगवान तो जानते थे कि सीता देवी वो शुद्ध है, और भगवान तो ये भी जानते थे कि तो माया सीता वहां पर गई थी। तो भगवान ने अग्नि परीक्षा इसलिए कराई अपने लिए नहीं, लोग सोचते हैं कि भगवान अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए सीता देवी को अग्नि परीक्षा से जाने के लिए कहा, नहीं, भगवान सीता देवी की कीर्ति स्थापित करना चाहते थे पूरे संसार में, और उस अग्नि परीक्षा से गुणगान किसका हुआ? सीता देवी का गुणगान हुआ। तो यहां पर भी भगवान सीता देवी का गुणगान करना चाहते थे, इसलिए अयोध्या में भी भगवान चिंता कर रहे थे कि यदि मेरी कीर्ति बनी रहेगी तो उस कीर्ति के वजह से मैं धर्म की स्थापना कर पाऊंगा, येन प्रकारेण मुझे बद्ध जीवों को धर्म के पथ पर लाना है। यदि मेरी कीर्ति के द्वारा वो धर्म के पथ पर आते हैं तो क्यों ना मैं अपनी कीर्ति के द्वारा उनको धर्म के पथ पर लाऊं। अगला उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु और राजा प्रताप रुद्र। राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा उस समय के, और वो चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त। उन्हें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना मिलना था, परंतु चैतन्य महाप्रभु राजा से नहीं मिले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि मैं राजा से मिलने जाऊंगा तो जितने सारे यहां जगन्नाथपुरी में हैं वो यही सोचेंगे कि एक सन्यासी है, वो राजा के ऐशो आराम सुविधा फैसिलिटीज को भोगने के लिए उनके साथ संपर्क कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि उसके वजह से लोग मेरी अकीर्ति करेंगे, और जिसके वजह से मैं जो प्रचार के लिए आया हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और फिर एक और उदाहरण है, जगन्नाथपुरी में एक छोटा सा बालक वो चैतन्य महाप्रभु के पास रोज आता, बहुत सुंदर सा बालक, और चैतन्य महाप्रभु बहुत स्नेह दिखाते उसके प्रति। तो दामोदर पंडित, वो बहुत स्ट्रिक्ट पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, तो दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु से कहे, आप इस छोटे से बच्चे से मिलना बंद करो। उन्होंने कहा, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा, क्योंकि ये जो छोटा बच्चा है ये एक विधवा का लड़का है, और वो जो विधवा है वो एक युवती है, और वो दिखने में बहुत सुंदर है, तो लोग ये कनेक्शन करेंगे कि आप एक सन्यासी हो, सन्यासी ये छोटे बच्चे पर इतना स्नेह इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उस बच्चे के थ्रू वो इसकी मां के साथ संग कर सके। तो वो दामोदर पंडित कहां कहां सोच रहे थे, बोले बंद करो, इससे आपकी अकीर्ति होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनकी बात मान ली। तो ये उदाहरण है कि कितना केयरफुल रहते थे, जैसे कि प्रभु श्री राम और चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं। और यदि हम हमारे हरे कृष्णा भक्तों के जीवन में देखें, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब हरे कृष्णा आंदोलन शुरू किया अमेरिका में, तो उस समय और आज भी अपकीर्ति बहुत हुई है हरे कृष्णा भक्तों की। उस समय तो जितने ये नव युवक, ये हिप्पी, ये अमरीकी, ये लोग सब श्रील प्रभुपाद को शरणागत हुए, तो इनके माता पिताओं ने ऐसे ऐसे डी प्रोग्रामर भेजे। डी प्रोग्रामर का अर्थ है कि वो आते थे और वो ये जो अब भक्त बन चुके हैं इनको उल्टी पट्टी पढ़ाते थे। जैसे कि गर्ग मुनि प्रभु वो कहते हैं कि जब वो ज्वाइन किए, इस्कॉन ज्वाइन किए, और सब गलत आदतें उन्होंने छोड़ दी, चार नियम पालन करना शुरू किया, तो उनके पिताजी ने गर्गमुनि प्रभु को घर पर बुलाया, बोले कि कुछ समय के लिए ऐसे ही मेरे साथ रहो, फिर बाद में तुम चले जाना। कुछ समय के लिए उन्होंने गर्गमुनि प्रभु को घर पर बुलाया, वो आए घर पर, और उन्हें मांस मिला मिला कर खिलाना खाने में, वो जानते थे कि ये मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन वो कहते हैं कि भगवान की कृपा ऐसी थी कि मेरा पेट खराब कर दिया भगवान ने और मैं वहां पे कुछ खा नहीं सका। तो सोचो, ये पिता है, अपने बेटे को वो मांस खिला रहा है ताकि वो नियम तोड़े। यहां तक कि पिता ने एक वैश्या को भेजा अपने पुत्र का नियम भंग करने के लिए, लेकिन फिर भी गर्ग मुनि प्रभु उन सब से निकलकर वापस श्रील प्रभुपाद की शरण में आए। तो उस समय इस प्रकार का एक वातावरण था कि ये जो हरे कृष्णा वाले हैं, ये भारत में भी हरे कृष्ण वाले जो हैं ये हट कर हैं, दे आर नॉट कॉमन नॉर्मल पीपल। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि आप लोग ये हरे कृष्ण में सब थोड़ा हटकर सब करते हैं। उस समय तो वो लोग ने ये सब कुछ छाप दिया था कि ये लोग बेडशीट पहनते हैं। हाँ, धोती होती तो उनको पता नहीं था, बोले बेडशीट पहनते हैं, लेकिन ठीक है बेडशीट भी अगर पहने लेकिन ये आगे कुछ तो लटकता रहता है, और शेव करते हैं लेकिन पीछे छोड़ देते थोड़ा सा। जैसे बंबई में हमारे एक ब्रह्मचारी हैं संकीर्तन प्रभु, तो वो उन्होंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर वो ब्रह्मचारी बन गए। तो सोचिए भारत में बहुत बड़ा धक्का लग जाता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये ऐसा बन गया, ब्रह्मचारी बन गया। तो उनकी जो मदर, अभी तो खैर बहुत अच्छी डिवोटी हैं, सोला माला करती हैं, शायद पता है दीक्षा भी हो गई होगी उनकी। तो उस समय संकीर्तन प्रभु हमारे ब्रह्मचारी की जो मदर है, उन्होंने पेपर में एक आर्टिकल छाप दिया अगेंस्ट हरे कृष्ण, कि ये हरे कृष्ण जो है इस्कॉन चौपाटी में ये नव युवकों को उकसाकर और पट्टी पढ़ाकर, जो भी ब्रेन वॉश कर उन्हें सब कुछ छुड़वा कर ये ब्रह्मचारी बना देते हैं। तो ऐसा पेपर में लंबा चौड़ा आर्टिकल उन्होंने राइटअप लिख के पेपर में छाप दिया। तो ये आर्टिकल पढ़कर एक व्यक्ति उस वो मंदिर आया देखने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई आईआईटी का है, कोई ना किसने पीएचडी ली है और वो सब कुछ छोड़ छोड़ के लोग ब्रह्मचारी बने, क्या है क्या, मतलब इनके फिलॉसफी में दम होगा ना तभी जाकर कोई ब्रह्मचारी बन। तो ये आया वो न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़कर, और ये अभी हमारे उधर के कांग्रेगेशन के राम केली प्रभु करके इनिशिएटेड डिवोटी। तो उल्टा हुआ कि वो जिस उद्देश्य से उन्होंने वो आर्टिकल छापा था, अभी जैसे वो हमारे श्रीमान देवानंद जी, उन्होंने वो दम मारो दम हरे कृष्णा हरे राम, तो गिरिराज महाराज को किसी ने कहा, गिरिराज महाराज सब लोग बोलते थे हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम, तो गिरिराज महाराज वो तो अमेरिका से, उनको क्या पता ये हिंदी कोई पिक्चर है। तो उन्होंने मद्रास में एक से पूछा कि ये क्या ये लोग गाते रहते हैं, एक ने कहा कि अरे ये पता नहीं आपको बॉलीवुड की एक पिक्चर नहीं आई है, पिक्चर का नाम है हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा, पिक्चर का नाम हरे कृष्णा हरे राम ना, और क्या इसमें, ये गाने में क्या, इस गाने में ये है कि बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, तो गए पिक्चर देखने के लिए। ये तो एकदम हमारा गुणगान हुआ है लगता है। तो वहां पर फिर जब देखा तो और ही कुछ था, तो 5 मिनट में बाहर आ गए वो। फिर प्रभुपाद को कहा, तो प्रभुपाद ने ये कहा कि आगे चलकर लोग वो दम मारो दम भूल जाएंगे लेकिन हरे कृष्णा हरे राम नहीं भूलेंगे, और वो ही सिद्ध हुआ कि लोग हरे कृष्णा हरे राम नहीं भूलेंगे। और प्रभुपाद ने कहा कि क्योंकि भगवान का नाम गाया जा रहा है, चाहे किसी भी प्रकार से गाया जाए, भागवत में तो कहा गया कि किसी भी प्रकार से यदि भगवान का नाम गाया जाए तो अंततः वो उनका उद्धार करेगा ही। आगे चलकर वो जो भी देवानंद, वो जाकर प्रभुपाद से माफी मांगा उसने कि मैं, मेरे मन में कुछ गलत विचार थे आप लोगों की संस्था के विषय में। तो हरे कृष्णा जो है, क्यों ये लगता है अक्सर बहुतों को कि यहां के जो तौर तरीके हैं, जो प्रणालियां हैं, वो नॉर्मल जो कोई अध्यात्म का भी पालन करता है तो उसके अनुसार नहीं है। ये इसलिए लगता है क्योंकि वहां पर नॉर्मल नहीं है कुछ, क्योंकि उधर सब कुछ एबनॉर्मल चल रहा है, और यहां पर जब सही तरीके से, जब किसी को पता ही नहीं था कि सही तरीके से अध्यात्म का पालन कैसे करना चाहिए, भगवद गीता का सही ज्ञान क्या है, जब हम जो भी रीति रिवाज का पालन करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, जब ये सही तरीके से समझाया जाए तो इसे कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते थे यस वी आर ब्रेन वॉशिंग पीपल। प्रभुपाद ने लिटरली वो वर्ड लिया, क्योंकि सबके जो वो जो बुद्धि है, जो ब्रेन मस्तिष्क है, वो इतना गंदा हो चुका है, उसको साफ करते हैं, वॉशिंग द ब्रेन। जैसे कि एक हमारे बद्रीनारायण प्रभु हैं, सैन डिएगो के टेंपल प्रेसिडेंट, तो बता रहे थे कि अमेरिका में एक शो होता है। ये शो ऐसा बहुत पॉपुलर शो है वहां का, जिसके अंदर डैन करके एक व्यक्ति, ये व्यक्ति किसी भी अलग अलग प्रकार के जो भी लोग हैं, थोड़े बहुत प्रसिद्ध हुए हैं या अप्रसिद्ध हो गए हैं, उनको बुलाता था अपने शो में, और उनको शो में बुला के ये इंटरव्यू लेता था, और इंटरव्यू लेकर केवल वो अगले व्यक्ति की खिल्ली उड़ाता था बस। और वो पूरे अमेरिका में बहुत फेमस था कि ये डैन का जो शो है इसमें लोगों को बुलाकर बस उनकी खिल्ली उड़ाएगा। तो इसने हरे कृष्ण वालों को बुलाए, बद्रीनारायण प्रभु को बुलाए, और ये बद्रीनारायण प्रभु बहुत हाजिर जवाब जो होता है ना कोई व्यक्ति, उस प्रकार के थे। तो इनको बुलाया, तो इन्होंने क्या किया, उसके शो में राजभोग महाप्रसाद की प्लेट लेके गए, तो पूरी भगवान की भरी हुई, भगवान को ऑफर्ड वो राजभोग की प्लेट, अलग अलग सब्जियां, स्वीट्स और ये सब। तो वो डैन ने जो महाप्रसाद की प्लेट देखी तो उसने, हाँ उसे पता नहीं था कि आज के शो में हरे कृष्ण वाले आने वाले, हाँ उसे ये नहीं पता था कि हरे कृष्ण वाले आने वाले, क्योंकि उसके वो जो भी पार्टी आती उसका एक सेक्रेटरी था, वो अपॉइंट करता था किसी को, तो उसे पता नहीं था कि आज के शो में हरे कृष्ण आने वाले। तो जैसे उसने हरे कृष्ण के एक डिवोटी को देखा और हाथ में महाप्रसाद की प्लेट, बोली इसको इधर बीच में रखो, इस प्लेट को बीच में रखो। तो कैमरामैन बोला कि अरे ये शो में ये थोड़ी रख सकते हैं हम ऐसे, बोले नहीं ये प्लेट इधर ही रहेगी, ये प्लेट यहां से जाएगी नहीं। लेकिन कैमरा जो भी हो, कैमरा आप कहीं भी कोई भी एंगल लो, प्लेट को लो ना लो, लेकिन ये प्लेट यहीं पे रहेगी। तो महाप्रसाद की प्लेट वो पूरे शो में दिख रही थी, सामने रखी हुई इन दोनों की। और इसने फिर वो शो में क्या किया करता था, ये जो डैन था, ये अलग अलग कोई भी कॉल कर सकता है, और कोई भी कॉल कर जो भी व्यक्ति आया है उसे प्रश्न पूछेगा या उसके ऊपर कोई ना चुनौती रखेगा, जो कुछ जो भी कुछ कर सकता है, गाली दे या उसकी प्रशंसा करे, और ये डैन उसके साथ, और फिर लास्ट में जो भी आया है उसकी खिल्ली उड़ानी है बस। तो फिर वो फोन कॉल शुरू हुए और वो स्क्रीन पर सबके सामने कैमरा पर वो फोन कॉल शुरू हो रहे हैं और यहां पर ये प्रसाद खाना शुरू। तो कैमरामैन बोल रहे ये क्या कर रहे, बोला नहीं मैं तो ये खाऊंगा, क्योंकि वो शो ऐसा था, एकदम ऐसा रेवोल्यूशनरी शो था, कुछ भी चलता था उस शो, बोला कुछ भी चलता तो खाना क्यों नहीं चलेगा, मैं खाऊंगा सर। वो महाप्रसाद खाए जा रहा है, बोला हाँ किसका कॉल है, ले कॉल लो। तो एक किसी क्रिश्चियन ने कॉल किया और उसने बोला कि these Hare Krishnas are worshippers of Satan. पता नहीं आप लोगों को पता है सेटन क्या होता है? उनके अनुसार सेटन मतलब राक्षस, कोई माया हम जिसको बोलते हैं ना, मतलब ये लोग सब राक्षस को पूजने वाले हैं, हरे कृष्णा वाले, वर्शिपर्स ऑफ सेटन। तो डैन खाया जा रहा, महाप्रसाद खा रहा था, उसने फोन लिया, उसने बोला आर यू अ क्रिश्चियन? आई एम अ क्रिश्चियन। उसने माइक पे बोला कि द लास्ट क्रिश्चियन डाइड ऑन द क्रॉस 2000 ईयर्स अगो, ऑन रख दिया, एंड दैट वाज जीसस क्राइस्ट, ही इज द ओनली क्रिश्चियन आई बिलीव। तो ये बद्रीनारायण प्रभु सोचने लगे कि ये आज मेरी तरफदारी कर रहा है। जनरली वो जो कॉल करते थे उनकी तरफ से ये दो तीन और मार देते थे, लेकिन आज बोले नहीं, आज आप, आपका शो है, आप जो आपको बोलना है बोलो, माइक आपके हाथ में, पूरा माइक उधर दे दो। और ये खाने लगे। फिर लास्ट में तो बद्रीनारायण प्रभु ने पूरा अपना प्रचार वगैरह सब किया माइक पे, फिर लास्ट में इन्होंने माइक लिया और इन्होंने कहा कि मैं जब कॉलेज में था फ्लोरिडा, गेन्सविल यूनिवर्सिटी में, फ्लोरिडा में मैं जब 4 साल कॉलेज में था, तो ये हरे कृष्णा का रोज वहां पर फूड फॉर लाइफ का वैन आता था और जितने स्टूडेंट्स वहां, पूरे यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स, उनको फुल लंच देते थे लोग फ्री। और मेरी मदर ने मुझे बोला था डोंट बाइट द हैंड विच फीड्स यू। तो ये आज का जो शो है, इस शो में मैं इन हरे कृष्णा के प्रति ऋणी हूं, क्योंकि पूरे 4 साल जब मेरे पास आने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, इन हरे कृष्णा वालों ने मुझे खाना खिलाया था। मैं कुछ नहीं जानता कि किसको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये लोग बहुत अच्छे लोग। तो उसने पूरे अमेरिका में बहुत फेमस शो में उसने ये डिक्लेरेशन किया इस प्रकार से। तो प्रभुपाद का भी यही कहना था, जब प्रभु शुरू में लोग कहते थे कि हरे कृष्णा को लोग उस नजर से देखते, प्रभुपाद ने कहा इट ऑल फेड अवे बिकॉज वी आर सिंसियर इफ यू आर सिंसियर। प्रभुपाद ने कहा इफ यू आर सिंसियर नन ऑफ द आउटसाइड एलिमेंट्स कैन डू एनीथिंग टू यू, इफ एनीथिंग कैन ब्रेक इस्कॉन इट विल बी फ्रॉम इनसाइड, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड। प्रभुपाद ने उस समय ये भविष्यवाणी कर दी थी। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, जो श्रील प्रभुपाद, जैसे कल हमने उनका तिरोभाव मनाया, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें कृष्ण भक्ति सिखाई, उस तरीके से यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं, तो हां भगवान श्री कृष्ण ये टेस्ट हमारे सामने रखेंगे। कौन सा टेस्ट? अपकीर्ति का, कि ये जो समाज है हमारा, जो तथाकथित परिवार है, ये जो देश है, ये लोग हमारे ऊपर एक प्रकार के लांछन लगाएंगे। जैसे मेरा एक मित्र, वो मुझसे जब मिलने आया तो मुझे पूछता है कि अरे तुम्हें ऐसे बाहर जाने में शर्म नहीं आती? मैंने कहा क्यों, कुछ गलत मैं कर रहा हूं? नहीं नहीं, तुम बाल बाल मुंडवा दिए धोती में। तो मैंने कहा कि उसके हाथ में सिगरेट थी, मैंने कहा तुम सिगरेट पीकर जाते हो बाहर, तुम तो रास्ते में ही तो खड़े हो, मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती सिगरेट हाथ में लिए? हाँ, तो मुझे बिडबैग हाथ में लेने में क्यों शर्म आनी चाहिए? इफ यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ होल्डिंग अ सिगरेट स्टिक इन योर हैंड, definitely this bead bag is much more healthier even materially than the cigarette stick. तो क्यों नहीं मैं ये गर्व से जाकर अपने संस्कृति को प्रस्तुत करूं। तो इसलिए हमें इस बात को नहीं सोचना चाहिए कि ये समाज क्या कहेगा, मैं ये तिलक लगा रहा हूं, मैं ये माला कर रहा हूं हाथ में, और मैंने ये कांदा लहसुन छोड़ दिया। बहुत से लोग, अरे कांदा लहसुन छोड़ दिया। हमारे एक ब्रह्मचारी, उनकी मदर ने जब पहली बार उन्होंने कहा, वो जब ज्वाइन भी नहीं किए थे, जब पहली बार उन्होंने कहा कि मैं कल से कांदा लहसुन नहीं खाया, उनकी मदर बेहोश हो गई। कि मेरा बेटा कांदा लहसुन नहीं खाएगा। एक व्यक्ति, एक हमारे राधा गोपीनाथ के भक्त, उनके पिताजी उनको पैसे देते थे, ये ले एक्स्ट्रा 1,000 रुपया एक्स्ट्रा, तू पब में जा, तू डिस्को में जा, तू दारू पी, ये कर, लेकिन हरे कृष्णा मंदिर में मत जाना। तो जैसे बाप थे वैसे उनके पिता, ओ, बेटे भी, उन्होंने कहा ठीक है लाइक, तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया लेते थे और बोलते थे जा रहा हूं मैं पब में जा रहा हूं, और जाते थे अपने संडे फिस्ट प्रोग्राम में, और वहां पर वो जो जो पैसा उनके पिता देते थे वो पैसे से वो बुक्स खरीद के वो वितरित करते थे, वो पब्स और डिस्को क्लब के सामने, अंदर नहीं बाहर। तो इसलिए यहां पर भगवान जो अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान ये बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे संपर्क में यहां पर हो, और तुम मेरे संपर्क में आकर स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो लोग जो हैं तुम्हारी जो खिल्ली उड़ाएंगे वो इसलिए उड़ाएंगे कि भगवान के संपर्क में होने के बावजूद अर्जुन ने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। अब यदि हम जो श्लोक का दूसरा भाग है उसमें भगवान ने कहा कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है, जैसे कि जो उत्तम पुरुष होता है। अब देखिए इस भौतिक संसार में भी लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जैसे कि हमारे एक डिवोटी आईआईटी के, वो बता रहे थे कि वो जब आईआईटी में थे तो आईआईटी में एक स्टूडेंट ने आत्महत्या का अटेम्प्ट किया। स्टूडेंट आईआईटी में बहुत, हर साल कोई ना कोई आत्महत्या करता रहता आईआईटी में। आईआईटी जानते हैं ना, आईटीआई नहीं आईआईटी। तो इसने आत्महत्या का अटेम्प्ट किया लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि इंडिया में क्या है, उसने ना पंखे से अपने आप को लटका लिया, लेकिन सब वो नकली रस्सी थी तो रस्सी टूट गई। मेरा भारत महान, तो कोई आत्महत्या करने भी जाता है तो रस्सी भी नकली डुप्लीकेट रस्सी होती है, वो भी टूट जाती है। वो कोई वो टिक 20 पीने गया था, टिक 20 भी पिया, टिक 20 जानते हैं ना, टिक 20 पिया मरा नहीं, क्योंकि वो एडल्ट्रेटेड था, उसमें मिलावट थी। तो इसको जब पूछा गया, ये मरा नहीं, तो इसको पूछा गया तुम यार तुम तो अच्छे खासे स्टूडेंट, तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? तो उसे उस वर्ष गोल्ड मेडल नहीं मिला, सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मेडल मिला इसलिए वो आत्महत्या कर रहा था। और एक था वो 5 साल से फेल हो रहा था और वो एकदम मस्त राम घूम रहा था, उसको कोई कोई उसको फिकर नहीं। तो उसको जब उसको बताया गया कि एक वो है वो 5 साल से फेल हो रहा है, तेरे को सिल्वर मेडल मिला तो आत्महत्या कर रहा है, तो उसको जब पूछा गया जो 5 साल से फेल हो रहा था, उसको बोला कि भाई तुम्हारा क्या फिलॉसफी है? उसने कहा मेरा फिलॉसफी बहुत सिंपल है कि आईआईटी में आने का काम मेरा है, बाहर निकलने का काम आईआईटी का है। टू एंटर इन टू आईआईटी इज माई ड्यूटी, टू गेट मी आउट ऑफ द आईआईटी इज द ड्यूटी ऑफ द आईआईटी। तो मैं निश्चिंत फुर्सत में हूं, कोई टेंशन नहीं। तो अब एक होते हैं जिनको कोई मान अपमान अकीर्ति वकीर्ति कुछ नहीं, तो उत्तरणादपि सुनिचेन का फल नहीं करते। तो हमारे पास उदाहरण है चैतन्य चरितामृत, छोटा हरिदास। अब छोटा हरिदास, इनकी कथा ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षा देना चाहते थे इनके द्वारा, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास का उदाहरण सामने प्रस्तुत किया कि जिन्होंने, हालांकि कोई त्रुटि नहीं थी इनकी ओर से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो एक तथाकथित त्रुटि देखी छोटा हरिदास के व्यवहार में, तो बहिष्कृत किया छोटा हरिदास को। जब बहिष्कृत किया तो छोटा हरिदास उन्होंने आत्महत्या की। तो ये एक उदाहरण यहां पर जो भगवान बोल रहे हैं कि जिसकी अपकीर्ति हुई है वो मरने से भी ज्यादा बदतर है उसके लिए। जैसे छोटा हरिदास ने वो अपकीर्ति वो सहन नहीं कर पाए तो उन्होंने प्रयाग में जाकर पत्थर बांधकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो जो उनकी आत्महत्या, चैतन्य महाप्रभु जब बताया गया कि छोटा हरिदास ने आत्महत्या कर ली, चैतन्य महाप्रभु ने कहा सही किया उसने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि आगे चलकर ये वो गोलोक वृंदावन धाम के गंधर्व बनेंगे और गंधर्व के रूप में आकर वो रोज चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करते थे, भजन गाया करते थे, जो कि उनकी पहली की स्थिति से बहुत अच्छी स्थिति उनको प्राप्त हुई, वो चैतन्य महाप्रभु जानते थे। लेकिन यहां पर हम जो अपकीर्ति मरने से भी ज्यादा बदतर है उसकी चर्चा करें। महाराज दशरथ जो कि इतने प्रख्यात विख्यात उस कुल के रघुकुल के महाराज दशरथ, और जब उन्होंने ये देखा कि मैं रघुकुल का इतना विख्यात राजा, तो आगे चलकर लोग मुझे किन नजरों से देखेंगे, तो इस ग्लानि में, इस अपकीर्ति की ग्लानि में महाराज दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। और अंततः बलि महाराज की कथा है श्रीमद् भागवत में कि उन्होंने प्रण दे दिया कि मैं 3 पग भूमि दूंगा आपको ब्राह्मण, हालांकि वो स्वयं भगवान थे वामन देव, तो 2 पग में ही जब भगवान ने सब कुछ ले लिया, उसके पश्चात बलि महाराज ने सोचा कि अरे मैंने जो प्रण दिया वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं, तो इससे अच्छा मैं अपने आप को, मेरे प्राण त्याग दूं, तो अपना सर वामन देव को दे दिया। तो ये बलि महाराज का उदाहरण कि वो तैयार थे कि नहीं, मैं अपना प्राण यदि उससे मैं बैकआउट कर रहा हूं, इससे अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दो। अब कीर्ति एवं यश की सही पहचान, तो हमारे सिद्धांत में हम समझते हैं तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मान देना। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि कोई मान की अपेक्षा नहीं रखते हुए, दूसरों को हर समय सम्मान देते हुए, जब हम तृण से भी अधिक नम्र और एक तरु से भी ज्यादा सहनशील होंगे, तब जाकर हम भगवान का नाम नित्य रूप से ले सकते हैं। ये इसका ट्रांसलेशन है। तो अब हम कैसे समझें, यहां पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें जो अकीर्ति प्राप्त होगी, तो भगवान क्या अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि तुम मान की अपेक्षा रखो, कैसे समझें? क्यों भगवान अर्जुन को मान या कीर्ति या यश की अपेक्षा करने के लिए कह रहे हैं? ये हम समझेंगे भगवद गीता के अंतिम श्लोक से, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। संजय कहते हैं कि जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है, वहां पर विजय यश कीर्ति नीति भूति ये सब कुछ आनी ही है। तो भगवान यहां पर अर्जुन के सारथी बने ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे साथ हो तो मेरे साथ रहने के वजह से तुम्हारी कीर्ति निश्चित तुम्हें मिलनी है, उसे आर्टिफिशियली तुम मत त्यागो, क्योंकि तुम्हारी कीर्ति मेरे ही संपर्क में, या किसी भी जीव की कीर्ति, असली कीर्ति या यश भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में ही हो सकती है। तो इसलिए जब एक भक्त वो कहता है कि मुझे मान की अपेक्षा नहीं, मैं दूसरों को सम्मान देना चाहता हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये डिवोटी हैज ट्रू ईगो। वो ट्रू ईगो क्या है? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। दैट काइंड ऑफ फेम अ डिवोटी इज क्रेडिटिंग इट टू कृष्णा, तो वो होना आवश्यक है। तो ये अंतर है इन दोनों श्लोकों में, इन दोनों श्लोकों को जब हम सही तरीके से मैच्योरली समझेंगे तब समझ में आएगा कि कीर्ति की और यश की सही पहचान क्या है। अब कीर्ति एवं यश का दुरुपयोग भी हुआ है, जैसे कि यादव, भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में ही जन्मे और ये यादव भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमद् भागवत में उदाहरण है कि यादव भगवान श्री कृष्ण को बस अपना ही एक वंशज मान रहे थे। आजकल भी लोग मुंबई में आप जाओ, बहुत से टैक्सी ड्राइवर, जैसे कई बार हम उनकी टैक्सी में बैठते थे, महाराज हम भी यादव कुल के ही हैं। तो यादव कुल के हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किसने कर रहे हैं, तो लोग ये स्टैंप लगा लेते थे कि हम यादव कुल के। तो उस समय भी भगवान ने देखा कि ये जो यादव हैं ये केवल मेरे नाम पर सब कुछ गलत कर रहे हैं, और उन्होंने एक वैष्णव अपराध भी किया था इन्होंने। तो भगवान इसलिए, ये महाभारत में और भागवत में भी वर्णन है कि भगवान यादवों से ज्यादा पांडवों के साथ रहा करते थे। भगवान ने अत्यधिक समय पांडवों के साथ बिताया, हालांकि पांडवों के संपर्क में रहने के बावजूद पांडवों को इतने दुख मिले। भीष्म पितामह प्रथम स्कंद में वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, बहुत ही सुंदर उनकी शिक्षाएं हैं और उनका साक्षात्कार। भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि आप लोग जो इतनी कृष्ण की भक्ति किए हो, मुझे डर है कि लोग आप लोगों का उदाहरण देख कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जीवन में इतनी तकलीफें हैं, तो कोई बोलेगा कि अरे भाई कृष्ण की भक्ति क्यों करें, हम काली दुर्गा ये बाकी देवताओं की भक्ति करें ना, ये पांडवों ने कृष्ण की भक्ति की, इतनी तकलीफें इनको मिली। नहीं 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 भैया, हाँ, और लोग इस डर के वजह से कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज का गुणगान कर रहे थे कि केवल आप लोग इतने सहनशील थे कि आप लोगों ने कभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर संशय नहीं किया। इसलिए भगवान जिस कुल में पैदा हुए उस कुल का ही विनाश भगवान ने करवाया, यादव कुल का। और भगवान हर समय पांडवों के साथ रहा करते थे, क्योंकि हम हमारे ब्रह्मचारी के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि जो यादव थे भगवान श्री कृष्ण को लेकर लड़ मरे, और जो पांडव थे उनको कितने कारण थे लड़ने के, बट दे नेवर फॉट अमंगस्ट ईच अदर, कभी वो आपस में उन्होंने लड़ाई नहीं की। हमने शायद पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी, दे हैड ऑल द रीजंस टू फाइट बट दे नेवर फॉट अमंगस्ट ईच अदर, एंड दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ द पांडवस। कृष्ण ने ये देखा, और इसलिए भगवान हर समय, बड़े बड़े ऋषि मुनि वो हिमालय गुफाओं में से आकर हस्तिनापुर में जाते, क्योंकि वो जिनके ऊपर अपना ध्यान लगाए थे वो हस्तिनापुर में बैठे थे, युधिष्ठिर महाराज के महल में। सो दे वुड लीव दोस फॉरेस्ट एंड दे वुड कम टू द सिटी ऑफ हस्तिनापुर बिकॉज द लॉर्ड वॉज रिजाइडिंग देयर बिकॉज ऑफ द पांडवास। तो ये यादवों का उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण है नलकुंवर मणिग्रीव। कार्तिक के महीने में दामोदर लीला भगवान ने जो की, तो नलकुंवर और मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र और शिव जी के अनुचर, और इन्हें बहुत घमंड था। किसका घमंड था? कि हम कुबेर के पुत्र हैं, ट्रेजरर हैं पूरे डेमीगॉड्स के, उनके हम पुत्र, और इतना बड़ा कुल हमारा, शिव जी के अनुचर हैं हम, कैलाश में हर समय हम वहां पर विचरण करते हैं। तो ये जो वो मदांध थे, मद से अंधे थे, अहंकार से अंधे थे, वो कम करने के लिए दुरुपयोग उन्होंने किया था उनकी कीर्ति और यश का, नलकुंवर और मणिग्रीव ने। इसलिए नारद मुनि ने उन्हें बहुत ही क्या बोलते हैं, सूक्ष्मता से और दक्षता से उनकी बीमारी ठीक की नारद मुनि ने। तो यदि अर्जुन का ही उदाहरण हम लें अंत में, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है प्रथम स्कंद का, जहां पर अर्जुन अपनी कीर्ति के विषय में कह रहे हैं कि मेरी कीर्ति का कारण कौन थे। इस सुंदर श्लोक में अर्जुन कहते हैं, तद्वै धनुस्त ईशव स रथो हयास्ते सोहम रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वम क्षणेन तद अभुद असत ईश रिक्तम भस्मम हुतम कुहकराधम इवोप्तम उष्यान। वो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं अर्जुन कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात मैं जब वापस आ रहा था तो कुछ साधारण से ग्वाले मुझे हरा दिए। यहां पर लिखा गया सम इनफिडल कवर्ड बॉयज दे, पिछले श्लोक में हो, उन्होंने मुझे हरा दिया। हालांकि वो बोल रहे हैं आई हैव द सेम गांडीव सेम एरो द सेम चैरियट सब कुछ सेम और मैं भी वही अर्जुन हूं, लेकिन मैं वो जो गांव वाले थे उनसे मैं हार गया। इतना प्रसिद्ध अर्जुन वो हार गया उनसे। तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि ईश रिक्तम भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं थे। आई वॉज डिवॉइड एबसेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन अ मोमेंट, एक क्षण में, क्षणेन एक क्षण में जितने मेरा ऐश्वर्य मेरी कीर्ति थी वो सब कुछ चला गया। तो अर्जुन इस सुंदर श्लोक के द्वारा क्या बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई अगर भस्म के ऊपर घी डालता जाए तो क्या यज्ञ होगा संपन्न। तो ये अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं कि यदि अर्जुन जैसे प्रख्यात योद्धा उनकी सारी कीर्ति यश और बल ऐश्वर्य सब कुछ चला जाता है जब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में वो नहीं रहते, तो फिर हमारी क्यों औकात है। इसलिए ये एक सुंदर कथा है जी, जब भगवान विष्णु एक बार शिवजी से मिलने आ रहे थे तो गरुड़ पर आसीत थे भगवान विष्णु, जो कि गरुड़ उनका वाहन। तो गरुड़ जी ने देखा कि शिवजी के गले में जो सर्प था वो फुफकार रहा था गरुड़ जी के ऊपर। तो गरुड़ जी ने एक श्लोक कहा उसे कि तुम इतना फुफकार रहे हो क्यों, क्योंकि तुम शिवजी के गले पर हो, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है मुझसे लड़ने की। जैसे कई बार लोग बोलते हैं अच्छा भार मिल, तो यहां पर भार मिल, वैसे गरुड़ जी ने वो शिवजी के गले में जो सर्प था उसे कहा तुम गले से बाहर तो आ, तो अभी शिवजी के गले पे इसलिए मैं तुमको कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो खाली गले से बाहर आ फिर मैं बताता हूं। वो फिर भी फुफकार रहा था गरुड़ जी के ऊपर, क्योंकि हर समय वो जो गरुड़ और जो सर्प है उनका 36 का आंकड़ा रहता है। तो उन्होंने श्लोक में कहा स्थान प्रधान न बल प्रधान, कि तुम इतना फुफकार रहे हो जिस स्थान पर तुम अभी वहां पर विराजित हो ना शिव जी के गले पर, वो स्थान के वजह से तुम्हें पावर मिल रहा है, तुम्हारे अंदर कोई पावर नहीं है। स्थान प्रधान न बल प्रधान, तुम्हारे अंदर कोई बल नहीं है। यू आर गेटिंग ऑल द पावर बिकॉज वेर यू आर सिचुएटेड दैट प्लेस इज गिविंग यू द पावर। तो वैसे ही हम लोग जो इस्कॉन में स्थित हैं, श्रील प्रभुपाद ने ये जो स्थान हमें क्रिएट कर दिया है, तो इस स्थान पर खड़े होकर हम जोर जोर से बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये हरे कृष्ण महामंत्र ही एक में हमें उद्धार के लिए दिया गया है ये सब कुछ। लेकिन जैसे ही हम इस्कॉन के संपर्क से छूट जाएंगे तो ये वही स्थिति होगी जो गरुड़ जी उसे कह रहे हैं, स्थान प्रधान न बल प्रधान। तो हमारा भी जो भी बल है, हम जिस बल से भक्ति कर पा रहे हैं, प्रचार कर पा रहे हैं, वो श्रील प्रभुपाद, जैसे यहां अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ही संपर्क में वो गांडीव वो रथ और मैं अर्जुन हम सब का बल था। तो वैसे ही हम सब श्रील प्रभुपाद की ही कृपा से हमारी भक्ति कर पा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से इस भक्ति को फैला पा रहे हैं। ये है आज के इस श्लोक का सारांश। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की।